ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण मूल वाल्मीकि रामायण भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सद ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो, तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए।
ओम श्री सतगुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति हो, और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को न धारण करोगे तो तुम्हारे दुख नष्ट न होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनि को पाओगे। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के आगे बादल होते हैं तो प्रकाश नहीं होता, जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश भासित होता है और वह कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही आत्मरूपी सूर्य को अहंकार रूपी बादल का आवरण हुआ है। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ मानने को अहंकार कहते हैं। जब अहंकार रूपी बादल नष्ट होगा तब आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश होगा और ज्ञान रूपी उस प्रकाश को पाकर बड़े आनंद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, ऐसे अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाए। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता? अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है, और अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सत शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट हो जाता है, बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है पर अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे रामचंद्र जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो। मैं कौन हूं, इंद्रियां क्या है, गुण क्या है और संसार क्या है, ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षी भूत हो। तुम में अहम त्वम कोई नहीं, इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ।
श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 214। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भ्रम से अनहोता जगत दिखता है और होते का अभाव प्रतीत होता है। जैसे वंध्या अनहोते पुत्र को देखती है और पुत्र वाली स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञान से अनहोता जगत सद्भासित होता है और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभाव प्रतीत होता है। सो भ्रम से ही और का और भासता है। दिन में सोया हुआ पुरुष स्वप्न में रात्रि देखता है और रात्रि को सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार और अंधकार में प्रकाश देखता है, सो भ्रम से ही देखता है। पृथ्वी पर सोया मनुष्य स्वप्न में आकाश पर दौड़ता फिरता है और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है, यह सब भ्रम से ही दिखता है। वैसे यह जगत जीव भी भ्रम से जागृत को विपरीत रूप देखते हैं। जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे स्वप्न में मुर्दे भी बोलते चालते दिखते हैं, जैसे स्वप्न में तुमको नाना प्रकार का जगत दिखता है और जागकर कहते हो कि सब भ्रम मात्र था, वैसे ही मुझको यह जागृत जगत भ्रम मात्र जान पड़ता है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे दो मनुष्य एक ही से होते हैं और दो सूर्य हो तो उनमें कुछ भेद नहीं होता, वैसे जागृत और स्वप्न में कुछ भेद न जानना। राम जी ने पूछा, हे भगवन, स्वप्न की प्रतिभा अल्पमात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जागकर कहता है कि वह ब्रह्मात्र थी और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है, पर तुम दोनों को समान कैसे कहते हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत कहती है और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और चित्त में स्मृति होती है वह स्वप्न है। वह जागृत और स्वप्न दो प्रकार का है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत है और उसमें जब सो गया तब स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में जगत दिखा तो जहां जगत दिखा वही उसका जागृत हो गया और जहां से सोया था वह स्वप्न हो गया। वहां जो स्वप्न भासित हुआ उसको जागृत जानो। मनुष्य लोगों से चेष्टा करने लगा, जब वहां से मृतक हो गया फिर इस अवस्था में आया तो पिछली को स्वप्न जानने लगा। तो चित्त के भ्रम से स्वप्नों को जागृत देखा और जागृत को स्वप्न देखा। हे राम, यह क्या हुआ? जैसे किसी को स्वप्न आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करने लगा, तब फिर उसमें स्वप्न हुआ, उस स्वप्नांतर से जागा तो फिर उस पहले स्वप्न में आया तो उसको स्वप्न जानने लगा और उस स्वप्न को जागृत जानने लगा। हे रामचंद्र जी, जैसे वह स्वप्नांतर से जागकर उसको स्वप्न कहता है और स्वप्न को जागृत कहता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न रूप है और आगे जो होता है वह स्वप्नांतर है। एक और प्रकार है, जो इस जागृत में मृतक हुआ, शरीर छूट गया, तब परलोक देखता है तो वह परलोक जागृत हो गया और इस जागृत को जीव स्वप्न जानने लगा। जैसे स्वप्न से जागा स्वप्न को भ्रम कहता है, वैसे ही इस जागृत को परलोक में भ्रम जानता है। फिर परलोक में स्वप्न आया तब परलोक की जागृत अवस्था स्वप्नवत हो गई और जो स्वप्न में सृष्टि देखी उसको जागृत जानता है। फिर वहां से मृतक होकर यहां आया, तब यह जागृत हो गई और परलोक स्वप्न हो गया। ऐसे हे रामचंद्र जी, स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या है। जब मूर्ख स्वप्न से जागते हैं तब वे जानते हैं कि इसका नाम जागना है और इसको जागृत मानते हैं और फिर उसको स्वप्न जानते हैं, पर वास्तव में वह स्वप्नांतर है और यह स्वप्न। इसमें जो तीव्र संवेग हो रहा है इससे इसको जागृत और उसको स्वप्न जानते हैं, पर दोनों तुल्य है, भेद कुछ नहीं। आत्मा में दोनों सतरूप है और इनकी प्रतिभा ब्रह्मात्र भासती है। आत्मा न कभी उपजता है न मरता है, और उपजता भी है और मरता भी है। उपजता इस कारण से नहीं कि पूर्व सिद्ध है, और मरता इस कारण नहीं कि भविष्य काल में भी सिद्ध है। परलोक में दुख भोगता है और ब्रह्म काल में जन्मता भी है और मरता भी है। सो प्रत्यक्ष भासित होता है, पर वास्तव में ज्यों का त्यों है। हे रामचंद्र जी, यह जगत उसका आभास है और चैत्य का चमत्कार चैतन्य होकर भासित होता है। जैसे घट मृत्तिका रूप है, मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे ही चेतन भी चैतन्य रूप है। चैतन्य से भिन्न जगत नहीं, स्थावर जंगम सब जगत चिन्मात्र रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे तुमको स्वप्न आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ दिखते हैं, सो तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं, वैसे यह सब दृश्य चिन्मात्र का रूप है। जैसे घट मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे यह जगत चिदाकाश से भिन्न नहीं है। जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नहीं, सब काष्ठ ही है, वैसे ही जगत चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न नहीं। जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण है, वैसे ही जगत भी चैतन्य रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य जगत रूप होकर दिखता है। जैसे अग्नि उष्ण रूप है, वैसे ही चैत्य चैतन्य रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे वायु निस्पंद रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे पृथ्वी घन होती है और आकाश शून्य होता है, जहां घना या ठोस है वह पृथ्वी है, और जहां शून्यता है वहां आकाश है, वैसे ही जहां चैत्य है वह चैतन्य है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संवित पहाड़ और नदियों के रूप में भासित होती है, वैसे ही चिन्मात्र सत्ता जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको दिखते हैं उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। यह सब विश्व आत्म रूप है, वह शुद्ध चिदाकाश रूप दुखातीत और आकाश से भी निर्मल है, ऐसा जानकर उसमें स्थित हो। हे राघव, जब तुमको स्वभाव सत्ता का अनुभव साक्षात्कार होगा, तब सद द्वैत कलना जो भासित होती है सो शांत हो जावेगी और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, चिदाकाश कैसा है जिसे तुम परब्रह्म कहते हो, और उसका रूप क्या है? तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पान करता मैं तृप्त नहीं होता, इसे कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक माता के गर्भ से दो पुत्र जुड़वा पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनका एक सा आकार होता है, पर जगत के व्यवहार के लिए उनका नाम भिन्न भिन्न होता है और भेद कुछ नहीं। और जैसे दो पात्रों में जल रखिए तो जल एक ही है पर पात्रों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे स्वप्न और जागृत दो नाम है परंतु है एक ही, किंतु आत्मा में दोनों ही कल्पित है। जिसमें दोनों कल्पित है वह चिदाकाश है। वृत्ति जो फुरती है और देश देशांतर को जाती है, उसके मध्य में जो ज्ञान रूप संवित है, जिसके आश्रय से वृत्ति फुरती है, वह चिदाकाश संवित है। वृक्ष जो रस को खींचकर ऊपर को जाते हैं, सो उसी के आश्रय से जाते हैं। ऐसे जो सत्ता है वह चिदाकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे सब वृक्ष फूल फल टास आदि सहित रस के आश्रय से उगते बढ़ते हैं, वैसे यह सब जगत चिदाकाश के आश्रय से फुरता है और उसी के आश्रय से वृत्ति फुरती है, वही सत्ता चिदाकाश है। जिसकी इच्छा सब निवृत्त हो गई है और राग द्वेष रूपी मल से हीन जो शरतकाल के आकाश सम निर्मल हो गया है, उसकी शुद्ध संवित है, उसको चिदाकाश जानो। हे रामचंद्र जी, जगत का जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, उस मध्य काल में जो अद्वैत सत्ता है वह चिदाकाश है। बेल फूल फल गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय से बढ़ते हैं वह चिदाकाश है। रूप अवलोक मनस्कार इन तीनों का जहां अभाव है, ऐसे शुद्ध संवित ही चिदाकाश है। पृथ्वी पर्वत और नदी आदि सबका जो आश्रय है वह चिदाकाश है। दृष्टा दृश्य दर्शन ये तीनों जिससे उपजे है और फिर जिसमें लीन होते हैं, वह अधिष्ठान सत्ता ही चिदाकाश है, जिससे सब उपजते हैं। जो यह सब है और जिसमें सब है, ऐसा सर्वात्मा चिदाकाश है। अर्ध रात्रि को उठने पर इंद्रियों की चपलता का विषय से अभाव होता है, उस काल में जो शांत सत्ता होती है वही चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, जिस संवित में स्वप्न की सृष्टि जगती है और फिर जागृत भासती है और दोनों के करने वाले में सोता है, वह चिदाकाश है। जैसा फुरना होता है वैसा ही जगत में भासित होता है, वही दृष्टा दर्शन दृश्य होकर भासता है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मरूपी सूत्र में असत्य सत्य जगत रूपी मणि पिरोए हुए हैं, जिसके आश्रय से इनका फुरना होता है वह चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, जिसके आश्रय से एक निमेश में जगत उपजता है और उन्मेष में लीन हो जाता है, ऐसी जो अधिष्ठान सत्ता है उसको चिदाकाश जानो। यह सब जगत मिथ्या है और भ्रांति से भासता है, जैसे मरुस्थल की नदी भासती है। इससे जो रहित है और जिसमें संकल्प विकल्प का क्षोभ नहीं और सदा अपने आप में स्थित और दुख से रहित निर्विकल्प सत्ता है, वही चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, नेति नेति के पीछे जो अनाद्य पद शेष रहता है उसको तुम चिदाकाश जानो। शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता सबका अपना और अनुभव रूप होकर प्रकाशित है। उसमें जैसा फुरना होता है कि ये ऐसे है, वैसा ही भासित होता है, वह चिदाकाश है। इससे शुद्ध आत्मसत्ता ही फुरने से जगत रूप होकर प्रकट होती है। जैसे जागृत के अंत में अद्वैत सत्ता होती है और फिर उससे स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, पर स्वप्न की सृष्टि वास्तव में नहीं उपजी, वही अनुभव स्वप्न की सृष्टि होकर भासित होता है, वैसे यह जगत जो कार्य रूप दिखता है, स्व अविद्या से दिखता है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण दिखती है, वैसे यह सृष्टि अकारण है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब स्थावर जंगम जगत चिदाकाश रूप है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, और जो दूसरा कुछ न हुआ तो कारण कार्य भी कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न भोक्ता है, न भोग है, सब कल्पना मात्र है। आत्मा के अज्ञान से कल्पनाएं उठती है और आत्मज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे समुद्र के जाने से समुद्र कल्पना मिट जाती है, क्योंकि अनुभव आत्मा में कारण कार्य कुछ नहीं हुआ। जो तुम कहो कि कारण कार्य क्यों भासित होते हैं, तो जैसे इंद्रचाल की बाजी में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं बने, वैसे यह जगत कारण कार्य कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नगर रूप होकर दिखता है, वैसे यह जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता ही फुरने से जगत की नई भासती है। जिस जगत को इदम रूप कहते हैं वह अहम रूप है, जिसको समुद्र कहते हैं वह भी अहंकार रूप है, जिसको रुद्र कहते हैं वह अपना ही अनुभव है, इत्यादि। जो सब जगत भासित होता है वह भावना मात्र है, जिसको जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसे ही होकर भासित होती है। इससे जब चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है, तब अज्ञान से जो विरुद्ध भावना हुई थी वह निवृत्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मन थोड़ा भी फुरता है तब वह जगत उत्पन्न हो आता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत भावना मिट जाती है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता है और जगत की ओर से घन सुषुप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है वह बोलता, चालता, खाता, पीता भी पाषाण सदृश मौन हो जाता है। इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे मृग तृष्णा की नदी अनहोती भासती है और भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में जगत भासित होता है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। जिसका आदि कारण न पाइए वह कारण भी असत्य जानिए। इससे सब जगत कारण के बिना ही भासता है, उपजा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण के बिना भासता है और जिसमें भासता है वह अधिष्ठान सत्ता है, क्योंकि जो अधिष्ठान में भासित होता है उसको भी वही रूप जानिए, और जो अधिष्ठान से व्यतिरेक भासित हो उसे ब्रह्मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में इंद्रियादिक पदार्थ भासित होते हैं और उनमें दृश्य दर्शन सब मिथ्या है, हुआ कुछ नहीं, वैसे यह जागृत जगत भी मिथ्या है, न कुछ उपजा है, न स्थित हुआ है, न आगे होना है और न नाश होता है। जब उपजा ही नहीं तब नाश कैसे हो? न कोई दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। श्री राम जी ने पूछा है, भगवान यह दृष्टा दर्शन और दृश्य क्या है और कैसे भासित होता है? यह आपने पहले भी कहा है और अब फिर भी कही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दृश्य सब अदृश्य रूप है, अकारण ही दृश्य होकर भासित होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य जो कुछ जगत विस्तार सहित दिखता है वह आदि स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आकाश का वन दिखे और पदार्थ दिखे सो वे सब चिदाकाश रूप है, वैसे यह जगत भी चिन्मात्र रूप है। कारण कार्य भाव कहीं नहीं, जैसे वायु स्पंद रूप होती है तब प्रतीत होती है और निस्पंद होने पर नहीं प्रतीत होती, वैसे ही आत्मा में जब चित्त फुरता है तब आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासती है। सो वही आत्मसत्ता भाव में अभाव रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है। इससे जो कुछ भासित होता है वह चैतन्य का आभास प्रकाश है और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। इसे इतर कहिए तो न दृष्टा है और न दृश्य है, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा है, हे ब्राह्मण, ब्रह्म की ज्ञाता जो इसी प्रकार है तो कारण कार्य का भेद कैसे होता दिखता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसमें जैसा जैसा फुरना होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। चैतन्य आकाश ही जगत रूप होकर भासता है और न कहीं पाषाण है न कार्य है। जैसे स्वप्न सृष्टि जो कारण कार्य सहित भासित होती है वह किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है, वैसे यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप ही है, न कहीं करता है और न भोगता है। केवल भ्रम से कर्ता भोगता भासित होता है और स्वप्न की नहीं विकल्प उठते हैं, वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में नगर और जगत दिखता है वह चिदाकाश अनुभव सत्ता ही ऐसे होकर भासित होती है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे यह जगत संपूर्ण चिदाकाश है। जब ऐसे जानोगे तब जगत भी ब्रह्म तत्व दिखेगा। हे राम, यह जगत चित्त के फुरने से उपजा है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है वैसे ही चित्त भ्रम से जगत की कल्पना होती है, पर इसका कारण ब्रह्म ही है और कारण कहीं नहीं, क्योंकि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है, अतः कारण किसका हो? वही सत्ता इंद्र रुद्र नदियां पर्वत आदि जगत होकर भासती है, उससे भिन्न द्वैत रूप कुछ नहीं। इसमें जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा ही रूप दिखता है। जैसे चिंतामणि और कल्पवृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही रूप भासित होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही पदार्थ रूप होता है।
हरि ओम, हरि ओम, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।